एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हमारी दुनिया को काफी हद तक गढ़ा है, शीत युद्ध।
हाँ,
और हमारे पास जॉन लेविस गैडिस की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब शीत युद्ध, एक नया इतिहास, यानी द कोल्ड वॉर, अ न्यू हिस्ट्री से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं।
बिल्कुल। और ये विषय मतलब ऐसा है कि इसकी गूंज तो आज भी सुनाई देती है ना?
हाँ बिल्कुल।
आधी सदी तक दुनिया दो खेमों में बटी रही, और आज भी जैसे हम अमेरिका चीन के तनाव देखते हैं, या रूस नाटो की खींचतान, या दुनिया भर में चल रहे कई संघर्ष, तो कहीं ना कहीं शीत युद्ध की छाया दिखी जाती है।
सही कहा।
इसे समझना आज की जो वैश्विक पहेली है उसको सुलझाने जैसा है।
और ये सिर्फ नक्शों या फौजों की कहानी नहीं है, ये विचारधाराओं का टकराव था।
हाँ, वो तो था ही।
लोकतंत्र बनाम साम्यवाद, ये बड़े बड़े नेताओं के व्यक्तित्व, उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनके डर की कहानी है। और साथ ही इसमें तकनीक का, खासकर परमाणु हथियारों का, वो पहलू है जिसने सब कुछ बदल दिया।
बिल्कुल।
और जैसा कि आपके भेजे गए स्रोतों में भी इशारा किया गया है, कई अप्रत्याशित मोड़ भी थे इसमें। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सोचा नहीं गया था।
सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि गैडिस की एक किताब और जो भी स्रोत हमारे पास हैं उनके जरिए इस जटिल दौर के सबसे जरूरी सबक और अंतर्दृष्टियों को सामने लाएं।
हाँ, कोशिश यही रहेगी।
कोशिश रहेगी कि इसे दिलचस्प और समझने में आसान बनाए रखें।
तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? लेखक से?
हाँ, लेखक से शुरू करते हैं। जॉन लेविस गैडिस, ये नाम शीत युद्ध के अध्ययन में मतलब बहुत बड़ा माना जाता है।
हाँ, बहुत बड़ा नाम है।
येल विश्वविद्यालय में सैन्य और नौसेना इतिहास के प्रोफेसर हैं,
हाँ,
और इन्हें अक्सर शीत युद्ध इतिहासकारों का डीन भी कहा जाता है।
डीन ऑफ कोल्ड वॉर हिस्टोरियंस, बिल्कुल।
और कमाल की बात यह है कि इन्हें जॉर्ज एफ कैनन, वही जिन्होंने कंटेनमेंट नीति दी थी, उनकी जीवनी के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है।
हाँ, पुलित्जर प्राइज विनर है।
तो जाहिर है ये अपने विषय के माहिर हैं।
हाँ, और इस किताब के लिए उनकी योग्यता सिर्फ उनके एकेडमिक कद तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपके एक नोट में भी हाईलाइट किया गया है, गैडिस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद उन्हें उन गुप्त दस्तावेजों तक पहुंच मिली जो पहले किसी के पास नहीं थे, सोवियत संघ के, पूर्वी यूरोप के, यहां तक कि चीन के भी।
अरे वाह।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बंद कमरे के दरवाजे अचानक खुल गए हों और आपको अंदर की सच्चाई पता चल जाए।
यानी वो कहानी के दूसरे पक्ष को भी जान पाई जो पहले सिर्फ अंदाजों पर आधारित था।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसी नई जानकारी के आधार पर वो एक संतुलित नजरिया पेश करती हैं जिसे पोस्ट रिविजनिस्ट कहा जाता है।
अच्छा, पोस्ट रिविजनिस्ट, ये क्या है?
हाँ, मतलब वो सिर्फ ये नहीं मानती कि स्टालिन की नीतियां और विस्तारवाद शीत युद्ध का कारण थे, जो कि पारंपरिक मत था।
हाँ, जो पहले मानते थे।
हाँ, बल्कि वो अमेरिकी नीतियों और उनके डर की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करती, जो रिविजनिस्ट मत था। वो इन दोनों के बीच का सच खोजने की कोशिश करती हैं।
हाँ।
एक बैलेंस्ड व्यू।
और उनकी लिखने की शैली सुना है काफी रोचक है, पढ़ने में मजा आता है।
हाँ, ये उनकी एक और खूबी है। वो जटिल भू राजनीति और विचारधारा की बातों को एक कहानी की तरह बुनती हैं, किरदारों यानी नेताओं के इरादे, उनके डर, उनकी गलतफहमियां, इन सबको सामने लाती हैं। इससे इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल न रहकर एक मानवीय नाटक बन जाता है,
जो कोई भी समझ सकता है।
हाँ, जिसे कोई भी समझ सकता है, और वो तथ्यों के आधार पर पुरानी धारणाओं को चुनौती देने से कतराती नहीं है।
दिलचस्प है। तो अब जरा किताब पर आते हैं।
हाँ,
इसका मूल मकसद क्या है, क्या बताना चाहती है ये किताब?
देखिए, गैरिस का लक्ष्य है शीत युद्ध का एक ऐसा इतिहास लिखना जो व्यापक भी हो और संक्षिप्त भी।
अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव भी और कॉन्साइज भी।
हाँ बिल्कुल, जिसमें नए मिले सबूत शामिल हों। और ये किताब सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं बल्कि आम पाठकों के लिए भी है जो इस अहम दौर को समझना चाहते हैं।
जैसा आपने कहा, ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये पूछती है ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ।
एग्जैक्टली, व्हाई एंड हाउ।
और कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है, टाइमलाइन क्या है इसकी?
ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध की बिल्कुल अंत से, 1945 में, जब अमेरिका और सोवियत संघ सहयोगी थे।
हाँ, नाजी जर्मनी के खिलाफ।
बिल्कुल। और खत्म होती है 1991 में सोवियत संघ के ढह जाने पर।
तो लगभग 45 साल का दौर।
हाँ, करीब 45 साल का वो पूरा पीरियड।
और इस पूरी कहानी का सार क्या है, किताब के मुख्य तर्क क्या हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है?
देखिए, जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके अनुसार गैडिस का पहला और सबसे बुनियादी तर्क ये है कि शीत युद्ध असल में दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं,
आइडियोलॉजीज,
हाँ, और जीवन पद्धतियों का टकराव था। एक तरफ लोकतांत्रिक पूंजीवाद, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, बाजार अर्थव्यवस्था थी, और दूसरी तरफ अधिनायकवादी साम्यवाद, जहां पार्टी का नियंत्रण था, नियोजित अर्थव्यवस्था थी।
बिल्कुल विपरीत।
बिल्कुल। कैरिस कहती हैं कि ये नतीजा पहले से तय नहीं था।
अच्छा, ये जरूरी नहीं था कि ऐसा ही हो?
नहीं, कई चीजों ने इसे प्रभावित किया। नेताओं के फैसले, तकनीकी खोजें, विचारधारा का जोर, और कई बार सिर्फ संयोग, किस्मत।
यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम सोवियत संघ नहीं था, बल्कि दो अलग दुनियाओं का, दो अलग सिस्टम्स का टकराव था।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा तर्क, जिस पर आपके नोट्स में भी काफी जोर है, वो परमाणु हथियारों की भूमिका से जुड़ा है।
हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स।
गैडिस इसे एक विरोधाभास की तरह देखती हैं। परमाणु हथियारों ने अभूतपूर्व विनाश का डर पैदा किया, जिसे आपसी सुनिश्चित विनाश या मैड कहते हैं।
मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, नाम ही डरावना है।
हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसी डर ने दोनों महाशक्तियों को सीधे युद्ध से रोके रखा।
अच्छा।
हाँ, गैडिस इसे लंबी शांति, लॉन्ग पीस कहती हैं, एक ऐसी शांति जो डर पर टिकी थी।
वाह, ये तो सोचने वाली बात है। सबसे खतरनाक हथियार ने ही सबसे बड़े युद्ध को रोक दिया, है ना?
हाँ, यही विरोधाभास है। और गैडिस ये भी तर्क देती हैं कि अंत में सोवियत संघ का पतन किसी बाहरी हमले या सैन्य हार से नहीं हुआ,
तो फिर कैसे?
बल्कि उसके अपने अंदरूनी विरोधाभासों से हुआ। आर्थिक कमजोरी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, इन सब वजहों से।
मतलब सिस्टम अंदर से खोखला हो गया था,
कह सकते हैं। वो इसे एक नैतिक संघर्ष भी मानती हैं, जिसमें आखिरकार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचार की जीत हुई।
तो किताब में किन पहलुओं को छुआ गया है, मतलब क्या क्या कवर होता है इसमें?
लगभग हर जरूरी पहलू, स्टालिन, ट्रूमन, आइजनहावर, केनेडी, क्रूशचेव, निक्सन, रेगन, गॉर्बाचेव जैसे नेताओं की भूमिका, उनके फैसलों का विश्लेषण है। परमाणु हथियारों का विकास, स्पेस रेस जैसी तकनीकी बातें हैं,
आर्थिक दबाव, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा।
हाँ, दोनों खेमों के बीच आर्थिक दबाव और सांस्कृतिक कॉम्पिटिशन का जिक्र है। और जाहिर है, बर्लिन नाकाबंदी, क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया और वियतनाम युद्ध जैसे बड़े संकट और प्रॉक्सी युद्धों की भी चर्चा है।
प्रॉक्सी वॉर्स, हाँ।
साथ ही सूचना के प्रवाह और सॉफ्ट पावर के असर पर भी रोशनी डाली गई है।
तो काफी काफी विस्तृत फलक है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, कुछ खास हिस्सों या अध्यायों पर नजर डालते हैं, जैसा कि आपके साझा किए गए स्रोतों में उभर कर आया है।
ठीक है।
शुरुआत कहाँ से होती है? शीत युद्ध का बीज कहाँ पड़ा, मतलब वो चिंगारी कहाँ से भड़की?
गैडिस शुरुआत करती है दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के माहौल से, जिसे वो द रिटर्न ऑफ फियर कहती हैं।
डर की वापसी।
हाँ, युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ नाजी जर्मनी के खिलाफ सहयोगी थे, लेकिन जीत के बाद ये गठबंधन बहुत तेजी से टूट गया।
क्यों टूटा?
गैडिस के मुताबिक इसकी मुख्य वजह स्टालिन का गहरा शक और असुरक्षा का भाव था। उन्हें डर था कि पश्चिमी देश फिर से उन्हें घेर लेंगे, जैसे पहले किया था।
और इसी डर की वजह से उन्होंने पूर्वी यूरोप पे नियंत्रण करना शुरू किया, पोलैंड, हंगरी वगैरह पे।
हाँ, गैडिस यही तर्क देती हैं, स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों पर जबरदस्ती साम्यवादी सरकारें थोप दी। उनके लिए ये अपनी सुरक्षा के लिए एक बफर जोन था।
लेकिन पश्चिम ने इसे अलग तरह से देखा होगा।
बिल्कुल। पश्चिम ने इसे सोवियत विस्तारवाद के सबूत के तौर पर देखा। यहीं से वो सुरक्षा दुविधा यानी सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होती है।
अच्छा, ये क्या है?
मतलब एक पक्ष अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाता है, दूसरा उसे अपने लिए खतरा मानता है, फिर वो भी जवाबी कदम उठाता है, और इससे तनाव बस बढ़ता ही जाता है, एक दुष्चक्र बन जाता है।
और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या थी? आपके नोट्स में ट्रूमन सिद्धांत, मार्शल योजना का जिक्र है।
बिल्कुल। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए नियंत्रण यानी कंटेनमेंट की नीति अपनाई। जॉर्ज कैनन ने अपने लॉन्ग टेलीग्राम में इसकी वकालत की थी।
हाँ, वो मशहूर टेलीग्राम।
ट्रूमन सिद्धांत के तहत उन देशों को मदद दी गई जो साम्यवादी दबाव का सामना कर रहे थे, जैसे ग्रीस और तुर्की। मार्शल योजना के जरिए युद्ध से तबाह पश्चिमी यूरोप को भारी आर्थिक मदद दी गई, ताकि वो साम्यवाद के आकर्षण से बच सकें।
और चर्चिल का आयरन कर्टन भाषण भी था।
हाँ, विंस्टन चर्चिल ने अपने प्रसिद्ध भाषण में यूरोप पर गिरे लौह आवरण यानी आयरन कर्टन की बात की। गैडिस इन्हें स्टालिन के कदमों की प्रतिक्रिया मानती हैं, न कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की पहली चाल।
इसके बाद आता है परमाणु युग, न्यूक्लियर एज। ये कैसे खेल को बदलता है?
ये खेल को पूरी तरह बदल देता है। अगले हिस्से में गैडिस मौत की नावें और जीवन रक्षक नावें, डेथ बोट्स एंड लाइफ बोट्स, ऐसे कुछ रूपक इस्तेमाल करती हैं। हाँ, 1945 में अमेरिका अकेला परमाणु शक्ति था, लेकिन 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बना लिया।
बस 4 साल बाद?
हाँ, अब दोनों के पास दुनिया को कई बार तबाह करने की क्षमता थी। यहीं से मैड यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत आया।
मतलब अगर एक ने हमला किया तो दूसरा जवाबी हमला करके उसे भी पूरी तरह नष्ट कर देगा। कोई नहीं जीत सकता था।
एग्जैक्टली, नो विनर।
तो इसने युद्ध को असंभव बना दिया, मतलब बड़ा युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3,
बड़े पैमाने पर सीधे युद्ध को। हाँ, लगभग असंभव। यही गैडिस की लंबी शांति है। लेकिन इसने संघर्ष को खत्म नहीं किया, बल्कि उसका रूप बदल दिया।
रूप बदल दिया? कैसे?
अब लड़ाई सीधे मैदान में नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से लड़ी जाने लगी, यानी प्रॉक्सी युद्ध, जैसे कोरिया में हुआ।
हाँ, कोरिया युद्ध,
जहां अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं लड़े, बल्कि अपने अपने समर्थित पक्षों के जरिए लड़े। या फिर बर्लिन एयरलिफ्ट जैसा तनावपूर्ण गतिरोध, जहां बिना गोली चलाए ताकत का प्रदर्शन हुआ।
स्टालिन की मौत हुई 1953 में। उसके बाद क्या माहौल थोड़ा बदला, कुछ नरमी आई?
हाँ, कुछ हद तक। गैडिस अगले दौर को स्टालिन की विरासत और उसके बाद आई थोड़ी पिघलाव यानी थॉ के रूप में देखती हैं, 1953 to 1962।
पिघलाव?
हाँ, स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव ने सत्ता संभाली और उन्होंने स्टालिन के कुछ अत्याचारों की निंदा की, डी-स्टालिनाइजेशन, और पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कही।
तो तनाव कम हुआ?
थोड़ी नरमी आई, लेकिन ये भी सीमित थी और तनाव बना रहा। अमेरिका में इस दौरान आइजनहावर राष्ट्रपति थे और उनकी न्यू लुक नीति परमाणु हथियारों पर ज्यादा निर्भर थी।
लेकिन क्या यहाँ पर वो सिस्टम का जो बुनियादी फर्क था वो और ज्यादा साफ नहीं हो गया?
हाँ,
आपके एक नोट में कमान बनाम सहजता का जिक्र है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गैडिस इसे दो प्रणालियों के मूल अंतर के रूप में देखती हैं। सोवियत प्रणाली कमान अर्थव्यवस्था थी, मतलब सब कुछ ऊपर से तय होता था, सेंट्रल प्लानिंग,
टॉप डाउन अप्रोच।
बिल्कुल, ये कठोर थी, नौकरशाही से भरी थी और अक्सर आम लोगों की जरूरतों के बजाय सेना पर ज्यादा ध्यान देती थी। वहीं पश्चिमी प्रणाली सहजता यानी स्पॉन्टेनिटी पर आधारित थी, बाजार अर्थव्यवस्था, इनोवेशन, कंपटीशन, उपभोक्ता वस्तुओं की भरमार,
कंज्यूमर गुड्स।
हाँ, इसके साथ ही पश्चिमी देशों के पास सॉफ्ट पावर थी, उनका कल्चर, संगीत, फिल्में, जीवन शैली, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती थी। गैडिस का तर्क है कि सोवियत मॉडल बिना जोर जबरदस्ती के लोगों का दिल या दिमाग नहीं जीत पाया।
और फिर 1960 का दशक आता है, बर्लिन दीवार, क्यूबा मिसाइल संकट, ये तो बड़ी खतरनाक मोड़ थे।
बेहद खतरनाक। बर्लिन दीवार 1961 तो साम्यवाद की विफलता का प्रतीक बन गई। सोचिए, लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए दीवार बनानी पड़ी।
हाँ, अपनी ही जनता को कैद रखना।
लेकिन गैडिस एक और पहलू दिखाती है। दीवार ने पूर्वी जर्मनी से हो रहे पलायन को रोक दिया, जिससे एक तरह की तनावपूर्ण स्थिरता भी आई।
और क्यूबा मिसाइल संकट, वो तो कयामत के बहुत करीब ले आया था दुनिया को।
बिल्कुल, 1962 वो क्षण था जब दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी थी। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी थीं, जो सीधे अमेरिका पर हमला कर सकती थीं।
रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया रहा होगा उस समय।
बिल्कुल, लेकिन इसका समाधान, जिसमें कैनेडी और ख्रुश्चेव दोनों ने थोड़ी पीछे हटने की समझदारी दिखाई, उसने भविष्य के संकटों को टालने और हथियार नियंत्रण यानी आर्म्स कंट्रोल की बातचीत शुरू करने का रास्ता खोला।
तो कुछ अच्छा भी निकला उससे।
हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि नेतृत्व कितना अहम हो सकता है। इसी दौर में एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था और नए आजाद देश, तीसरा विश्व, इन महाशक्तियों के लिए खींचतान का नया मैदान बन गए,
थर्ड वर्ल्ड।
हाँ, यहाँ अक्सर स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रवाद शीत युद्ध के सीधे साधे समीकरणों को और जटिल बना देते थे।
चीन का क्या हुआ? वो भी तो एक बड़ा खिलाड़ी था इस खेल में।
हाँ, बिल्कुल। अगले हिस्से में गैडिस चीन के बदलते रोल और खासकर चीन सोवियत विभाजन यानी साइनो सोवियत स्प्लिट पर ध्यान देती हैं।
ये कब हुआ?
ये 1960s के दशक में धीरे धीरे बढ़ता गया। ये एक बड़ी घटना थी, पहले माना जाता था कि पूरी दुनिया का साम्यवाद एक है जिसका नेता मॉस्को है।
हाँ, एक मोनोलिथ।
लेकिन माओ ज़ेडोंग के नेतृत्व में चीन ने सोवियत संघ से अलग राह पकड़ ली। इससे साम्यवाद का वो अखंड किला ढह गया और दुनिया की राजनीति दो ध्रुवीय से
त्रिध्रुवीय बन गई,
अमेरिका, सोवियत संघ और चीन।
हाँ बिल्कुल, इसने अमेरिका को एक नया रणनीतिक मौका दिया।
और इसी मौके का फायदा उठाकर निक्सन चीन गए और फिर वो देतां का दौर आया।
एकदम सही। 1970 के दशक में रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने इस त्रिध्रुवीय स्थिति का फायदा उठाया। निक्सन चीन गए और सोवियत संघ के साथ तनाव कम करने की नीति अपनाई, जिसे देतांग कहा गया।
देतांग मतलब तनाव में कमी। हाँ, इसी दौर में सॉल्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जैसी हथियार नियंत्रण संधियां हुई। मकसद था परमाणु हथियारों की होड़ को थोड़ा काबू में करना।
लेकिन देतांत का भी एक अनपेक्षित नतीजा निकला, जैसा आपके नोट्स बताते हैं, हेलसिंकी समझौते का जिक्र है।
हाँ, ये दिलचस्प है। 1975 में हेलसिंकी में यूरोप की सुरक्षा और सहयोग पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें पश्चिमी देशों ने मानवाधिकारों के सम्मान का मुद्दा बास्केट 3 शामिल करवा लिया।
ह्यूमन राइट्स।
हाँ, सोवियत संघ ने इस पर दस्तखत तो कर दिए, शायद ये सोचकर कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन पूर्वी यूरोप के देशों में जो लोग सरकार से असहमत थे,
डिसिडेंट्स,
हाँ डिसिडेंट्स, उन्होंने इसे हथियार बना लिया। इसी के आधार पर चेकोस्लोवाकिया में चार्टर 77 और पोलैंड में सॉलिडैरिटी जैसे आंदोलन खड़े हुए।
सॉलिडैरिटी, लिख वाले सवाला।
हाँ वही। इन आंदोलनों ने साम्यवादी सरकारों की वैधता पर सवाल उठा दिए और उनके नैतिक खोखलेपन को उजागर कर दिया।
यानी तनाव कम करने की कोशिश ने ही अंदर से विरोध को हवा दे दी। वाह,
कह सकते हैं। इसी बीच वियतनाम युद्ध भी हुआ, जिसे गैडिस शीत युद्ध के तर्क की एक बड़ी विफलता मानती हैं।
वियतनाम, हाँ, वो तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा सपना साबित हुआ।
हाँ, अमेरिका जैसी महाशक्ति एक छोटे से देश में उलझ कर रह गई, भारी नुकसान उठाया और अमेरिकी समाज भी बुरी तरह बट गया। ये दिखाता है कि सैन्य ताकत की भी सीमाएं होती हैं, खासकर जब स्थानीय राष्ट्रवाद से सामना हो।
और फिर आते हैं वो अभिनेता जिन्होंने अंत की कहानी लिखी, पोप, थैचर, रीगन, गॉर्बाचेव।
हाँ, गैडिस शीत युद्ध के अंत को कुछ प्रमुख व्यक्तियों के कार्यों से जोड़ती हैं। पोप जॉन पॉल II, जो खुद पोलैंड से थे, उनकी 1979 की पोलैंड यात्रा ने वहां के लोगों में एक नई उम्मीद और आध्यात्मिक जागृति पैदा की,
जिसने सॉलिडैरिटी आंदोलन को बल दिया। बिल्कुल।
ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और अमेरिका में रोनल्ड रीगन जैसे नेताओं ने सोवियत संघ के प्रति ज्यादा सख्त रवैया अपनाया। रीगन ने तो सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य यानी ईविल एम्पायर तक कह डाला।
रीगन का रवैया काफी आक्रामक माना जाता है, स्टार वॉर्स वगैरह
था। लेकिन गैरिस दिखाती हैं कि रीगन ने दोहरा खेल खेला। एक तरफ उन्होंने अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ाई, खासकर वो स्टार वॉर्स, SDI जैसी महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की, जिससे सोवियत संघ पर जबरदस्त आर्थिक दबाव बढ़ा।
और दूसरी तरफ
जब मिखाइल गॉर्बाचेव सोवियत नेता बने, तो रीगन ने उनके साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रखा। ये रणनीति दबाव और बातचीत कारगर रही।
और गॉर्बाचेव, उनकी भूमिका तो सबसे अहम मानी जाती है ना?
निसंदेह, गॉर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रॉयका यानी आर्थिक पुनर्गठन की नीतियां शुरू की।
ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रॉयका, हाँ।
उनका इरादा नेक था, वो साम्यवाद को बचाना चाहते थे, उसे ज्यादा मानवीय बनाना चाहते थे। लेकिन इन सुधारों ने अनजाने में उन ताकतों को आजाद कर दिया जिन्हें वो संभाल नहीं पाए।
जैसे
लोगों को बोलने की थोड़ी आजादी मिली तो दशकों का दबा हुआ गुस्सा और असंतोष बाहर आ गया। राष्ट्रीयता की भावनाएं भड़क उठी, अर्थव्यवस्था और चरमरा गई
और अंततः सब कुछ ढह गया।
हाँ, अंतिम अध्याय आशा की विजय, द ट्रायम्फ ऑफ होप, इसी कहानी को कहता है। सबसे निर्णायक मोड़ गैडिस के अनुसार तब आया जब 1989 में पूर्वी यूरोप के देशों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए और गॉर्बाचेव ने फैसला किया कि वे उन्हें दबाने के लिए सोवियत सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये बहुत बड़ा फैसला था,
एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके बिना शायद बर्लिन की दीवार शांति से नहीं गिरती।
बर्लिन की दीवार का गिरना 9 नवंबर 1989, वो तो वाकई एक प्रतीक बन गया, पूरी दुनिया ने देखा।
बिल्कुल, वो शीत युद्ध के अंत का सबसे नाटकीय पल था। उसके बाद घटनाएं तेजी से घटी। पूर्वी यूरोप के देशों ने एक एक करके साम्यवादी शासन को उखाड़ फेंका। जर्मनी का फिर से एकीकरण हुआ
और आखिरकार दिसंबर 1991 में
सोवियत संघ खुद ही विघटित हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया
और ये सब बिना किसी बड़े युद्ध के शांति से हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला है, मतलब इतनी दुश्मनी के बाद भी।
हाँ, गैडस्बी से एक धमाके के बजाय फुसफुसाहट के साथ खत्म होना कहती हैं। इट एंडेड विद अ विम्पर नॉट अ बैंग। वो इसका श्रेय सिर्फ पश्चिमी नीतियों को नहीं बल्कि लोकतंत्र के विचार की ताकत, उसके लचीलेपन, खुद को सुधारने की क्षमता और स्वतंत्रता की मानवीय इच्छा को देती हैं।
तो ये एक नैतिक जीत भी थी
उनके लिए। ये अंततः एक नैतिक नाटक था जिसमें मानवीय गरिमा की जीत हुई।
वाह, ये तो एक जबरदस्त कहानी है। अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य सबक या संदेश निकालना चाहें तो वो क्या होंगे, खासकर आज के संदर्भ में?
पहला और सबसे स्पष्ट संदेश तो विचारधारा के महत्व का है। आइडियोलॉजी मैटर्स।
हाँ,
ये सिर्फ हितों का टकराव नहीं था बल्कि जीवन जीने के दो अलग अलग तरीकों, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण का संघर्ष था। आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक तरह की वैचारिक स्पर्धा चल रही है।
भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बात खास मायने रखती है।
बिल्कुल। दूसरा सबक शायद परमाणु हथियारों की वो दो धारी तलवार वाला है जिसे आपने लंबी शांति का विरोधाभास कहा। परमाणु हथियारों ने बड़े युद्ध को तो रोका लेकिन दुनिया को लगातार एक डर के साए में रखा और छोटे परोक्ष युद्धों को बढ़ावा दिया
और आज भी खतरा बना हुआ है।
हाँ, आज जब कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और नए तरह के खतरे हैं जैसे साइबर युद्ध, आतंकवाद, तो ये सबक और भी प्रासंगिक हो जाता है कि स्थिरता कितनी नाजुक हो सकती है।
और तीसरा, व्यक्तिगत नेतृत्व की भूमिका। स्टालिन का डर, कैनेडी की सीख, रीगन का आत्मविश्वास, गोर्बाचेव का वो निर्णायक फैसला।
हाँ, ये बहुत अहम है। गैरिस बार बार दिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ बड़ी ताकतों या व्यवस्थाओं से नहीं बनता बल्कि नेताओं के व्यक्तिगत चरित्र, उनके फैसलों और यहाँ तक कि उनकी गलतियों से भी बनता है।
तो लीडरशिप मैटर करती है
बहुत ज्यादा। ये हमें याद दिलाता है कि आज के नेताओं के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो भारत में हो या कहीं और।
चौथा मुद्दा शायद व्यवस्थाओं की आंतरिक ताकत और कमजोरी का है। सोवियत कमान अर्थव्यवस्था का आखिरकार ढह जाना बनाम पश्चिमी बाजार व्यवस्था और सॉफ्ट पावर का टिके रहना।
सही। गैरिस इसे थोपा गया साम्राज्य बनाम निमंत्रण द्वारा साम्राज्य के रूप में भी देखती हैं।
एम्पायर बाय इम्पोजिशन वर्सेस एम्पायर बाय इन्विटेशन।
हाँ, जहाँ सोवियत प्रभाव बल और नियंत्रण पर आधारित था वहीं पश्चिमी प्रभाव में आकर्षण और स्वेच्छा का तत्व ज्यादा था। हालांकि वहां भी अपनी समस्याएं थीं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सी व्यवस्था ज्यादा टिकाऊ होती है, जो जबरदस्ती लागू की जाए या जो लोगों की सहमति पर आधारित हो।
आज के वैश्विक गठबंधनों को इस नजरिए से देख सकते हैं।
बिल्कुल। और पांचवा, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, विचारों और सूचना की ताकत, द पावर ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एक स्रोत में भी इसका जिक्र था।
रेडियो प्रसारण, किताबें, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बाद में मानवाधिकारों पर जोर, इन सब ने मिलकर साम्यवादी व्यवस्था के उस लोहे के पर्दे में छेद कर दिए।
सूचना अंदर पहुंच गई।
हाँ, सूचना का मुक्त प्रवाह अंदर से बदलाव लाने में कामयाब रहा। आज के डिजिटल युग में जहां सूचना और दुष्प्रचार दोनों तेजी से फैलते हैं, ये सबक हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत बताता है।
भारत में भी हम देखते हैं कि सूचना तक पहुंच कैसे समाज को बदल सकती है।
निश्चित रूप से,
ये तो बहुत गहरे सबक हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। स्रोत कुछ यादगार विचारों का जिक्र करते हैं।
हाँ, कुछ विचार हैं जो गैडस के तर्कों का निचोड़ पेश करते हैं। जैसे पहला तो यही कि गैडस का मानना है जब तक स्टालिन सोवियत संघ चला रहे थे शीत युद्ध अनिवार्य था।
ये तो बड़ी निर्णायक बात है, मतलब स्टालिन की भूमिका केंद्रीय थी।
हाँ, वो स्टालिन की भूमिका को बहुत केंद्रीय मानती है। दूसरा, परमाणु हथियारों पर वो विरोधाभास।
क्या था वो?
कि परमाणु क्रांति ने युद्ध को एक साथ अधिक खतरनाक और कन संभावित बना दिया।
हाँ, ये उस अजीब सी स्थिरता और लगातार बने हुए डर को बहुत अच्छे से पकड़ता है।
तीसरा, बर्लिन दीवार वाली बात भी दिलचस्प थी।
हाँ, वो क्या थी?
कि बर्लिन की दीवार साम्यवादी कमजोरी का संकेत और शीत युद्ध संबंधों में एक स्थिर करने वाली शक्ति दोनों थी।
अच्छा, दोनों चीजें, कमजोरी भी और स्थिरता भी।
हाँ, ये गैडिस के सूक्ष्म विश्लेषण का उदाहरण है। चीजें अक्सर काली या सफेद नहीं होती, उनके कई पहलू होते हैं।
और वो साम्राज्यों की प्रकृति वाला विचार,
साम्राज्य निमंत्रण से बनाम थोपने से, ये अमेरिका और सोवियत प्रभाव क्षेत्रों के मूल फर्क को समझने में मदद करता है।
कौन सा ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ, ये इतिहास ने दिखा दिया।
हाँ, और अंत में जीत किसकी?
किसकी?
गैडिस के शब्दों में, अंत में ये मानवीय भावना की जीत थी। गरिमा और स्वतंत्रता की मांगे अंततः उत्पीड़न को पराजित कर सकती हैं।
The triumph of the human spirit.
बिल्कुल, ये एक उम्मीद भरा संदेश है जो सिर्फ शीत युद्ध पर ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के दमन के खिलाफ संघर्ष पर लागू होता है।
तो अगर हम इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या दुनिया को समझने के तरीके में उतारना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं? मतलब आम इंसान क्या करे?
जरूर। पहला तो ये कि हम आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब हम अमेरिका चीन ट्रेड वॉर या यूक्रेन संकट या किसी और हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ते हैं, तो शीत युद्ध के सिद्धांत जैसे निवारण डिटरेंस, प्रभाव क्षेत्र स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रॉक्सी संघर्ष, सुरक्षा दुविधा हमें इन घटनाओं के पीछे की गतिशीलता को समझने में मदद कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, क्या यहाँ भी वैसी ही गलतफहमियां या डर काम कर रहे हैं?
तो करंट अफेयर्स को समझने का एक लेंस मिल जाता है।
हाँ, दूसरा, सॉफ्ट पावर के महत्व को पहचानना। सिर्फ सैन्य या आर्थिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती। संस्कृति, शिक्षा, मूल्य, विचार, ये भी किसी देश के प्रभाव का एक बड़ा जरिया हो सकते हैं।
हम सोच सकते हैं कि भारत अपनी सॉफ्ट पावर का कैसे और बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। योग, बॉलीवुड, हमारा लोकतंत्र।
हाँ, ये सब हमारी ताकत है। तीसरा, नेताओं पर ध्यान देना, उनके बयानों, उनके फैसलों, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करना। क्या वो पुल बना रहे हैं या दीवारें खड़ी कर रहे हैं?
क्या वो बातचीत के लिए तैयार हैं या टकराव के लिए?
एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा हमने देखा, नेताओं के फैसले दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं।
चौथा,
गठबंधनों की प्रकृति को समझना। क्या कोई गठबंधन सिर्फ साझा दुश्मन के खिलाफ बना है या उसके पीछे साझा मूल्य भी हैं? इतिहास बताता है कि साझा मूल्यों पर टिके गठबंधन ज्यादा टिकाऊ होते हैं।
ये महत्वपूर्ण।
और पांचवा, शायद सबसे जरूरी, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना। एम्पथी,
सहानुभूति।
हाँ, भले ही हम उनसे सहमत ना हो, लेकिन ये समझने की कोशिश करना कि दूसरा पक्ष ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके डर क्या हैं, उसकी मजबूरियां क्या हैं। गैडिस दिखाती हैं कि शीत युद्ध में कई बार गलत फहमियों ने संकट को बढ़ाया।
आज की तनावपूर्ण दुनिया में संवाद और सहानुभूति और भी जरूरी हो गए हैं।
बहुत ज्यादा।
वाकई शीत युद्ध का इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है बल्कि भविष्य के लिए एक सबक भी है। और इस चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो शायद यही है कि अंत कितना अप्रत्याशित था। इतनी कड़वाहट, इतने खतरे के बाद भी अंत शांतिपूर्ण रहा और जीत सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि मानवीय आकांक्षाओं की हुई। ये उम्मीद जगाता है।
और मेरे लिए नेतृत्व का महत्व सबसे ज्यादा उभर कर आया। कैसे एक नेता स्टालिन दुनिया को दशकों लंबे संघर्ष में धकेल सकता है और कैसे दूसरा नेता गोर्बाचेव हिंसा का रास्ता न चुनकर इतिहास का रुख मोड़ सकता है।
हाँ, इन एक्शन भी एक्शन हो सकता है।
बिल्कुल, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। साथ ही वो थोपा गया साम्राज्य बनाम निमंत्रण द्वारा साम्राज्य का विचार भी सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत किसमें है, नियंत्रण में या सहमति में।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। गैडिस ने दिखाया कि एक खतरनाक वैश्विक टकराव बिना महाविनाश के खत्म हो सकता है। क्या आज की बड़ी वैश्विक प्रतिद्वंदिताओं, चाहे वो देशों के बीच हों, विचारधाराओं के बीच हों या आर्थिक हितों के बीच हों, को भी सुलझाने के ऐसे रास्ते खोले जा सकते हैं जहां विनाश ना हो?
बड़ा सवाल है।
भविष्य के इतिहासकार हमारे समय को कैसे देखेंगे? क्या हम शीत युद्ध के सबक सीख पाएंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।